ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करने के प्रावधान हैं। विधेयक का उद्देश्य बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए वर्तमान विकल्पों की संख्या एक से बढ़ाकर चार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने देश में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में बैंक दबाव में थे और नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने पर एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली ढांचा तैयार किया, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे। वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2014 से करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल की खरीद के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 6,900 करोड़ रुपए की कुल लागत से नई दिल्ली में भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। ये संस्थान सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और स्वरोजगार तथा छोटे उद्यमियों के विकास में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में नवाचार तथा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नाम गुजरात में अमूल कंपनी की नींव रखने वाले त्रिभुवन भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को चिंताजनक इकाई के रूप में नामित किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने धार्मिक स्वतंत्रता पर आयोग की ही हाल ही में जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने का स्वरूप जारी रखा है। आयोग की रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2024 में अल्पसंख्यकों को खिलाफ कथित हमले बढ़ने का दावा किया गया है। बिहार से एनडीए सांसदों ने कल दिल्ली में भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर रात्रि भोज पर मुलाकात की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार से भाजपा सांसद शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाना था। बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की गई। नेपाल में आंखों का किफायती उपचार न केवल भारत से बल्कि बांग्लादेश और भूटान जैसे अन्य देशों से भी रोगियों को आकर्षित कर रहा है। नेपाल नेत्र ज्योति संघ से संचालित 28 नेत्र अस्पतालों और 224 नेत्र उपचार केंद्रों में विदेशी रोग आए हैं। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 152 रनों के लक्ष्य को 17 ओवर और 3 गेंदों में 2 विकेट पर 153 रन बनाकर हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक ने 61 गेंदों पर नाबाद रनों की शानदार पारी खेली और केकेआर की जीत दिलाई। आज हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।